से अभी जिज्ञासा कर रहे हैं स्वयंभू मनु के वंश के बारे में। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि ऐसे जो वंश होते हैं वो साधारण नहीं होते हैं, क्योंकि वो राज ऋषियों की परंपरा है। राजा और ऋषि दोनों का मिलन जब हो जाता है तब राज ऋषि कहते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। कृष्ण भगवान बताते हैं अर्जुन को कि ये जो भगवत ज्ञान है ये मुझसे आई थी। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राहुर मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत। कि मैंने ये ज्ञान विवस्वान को दिया, विवस्वान ने उनके पुत्र को दिया मनु, मनु ने उनके पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। और इस प्रकार से ये ज्ञान राज ऋषियों की परंपरा में चलती आई। तो ये राज ऋषि, इनकी जो परंपरा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस परंपरा में भगवत ज्ञान बना रहा। भगवत ज्ञान एक वंश, उसी वंश में आगे चलता गया। और भगवत ज्ञान का अस्तित्व इस भौतिक ब्रह्मांड में इन्हीं की वजह से रहा है। इसलिए हम बहुत ऋणी हैं इन राज ऋषियों के प्रति, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज तक ये भगवत ज्ञान हम तक पहुंच पा रहा है। आजकल ना तो हमें राजा प्रामाणिक मिलते हैं ना ऋषि प्रामाणिक मिलते हैं, लेकिन उस जमाने में राजा भी प्रामाणिक थे, ऋषि भी प्रामाणिक थे, और इनका मिलन जब होता था तो राज ऋषि कहलाते थे। तो इसलिए जो विदुर सुनना चाहते हैं मैत्र मुनि से, वो साधारण औरंगजेब या तो नेपोलियन ऐसे राजाओं के बारे में नहीं सुनना चाहते थे। वह ऐसे राजाओं के बारे में सुनना चाहते थे जो वास्तविक धर्म परायण थे, ऋषि थे, भगवान के भक्त थे, जो जिनको शास्त्रों का ज्ञान था, जो अपना खुद का जीवन शास्त्रों के आधार पर चलाते थे। ऐसे लोगों के बारे में विदुर जी सुनना चाह रहे हैं मैत्रेय मुनि से। अगर ये कोई साधारण राजा होते तो इनका वर्णन श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ में क्यों आता? श्रीमद् भागवत कोई साधारण भौतिक इतिहास का ग्रंथ नहीं है, ये परमहंस संहिता है। ऐसे लोगों के लिए है जो वास्तव में ईर्ष्या से मुक्त हो गए हैं। धर्म पोचित कैतवत्त परमो निर्मत्सराणाम सताम। तो निर्मत्सराणाम सताम जो मत्सर्य से पूरी तरह से मुक्त हैं, ऐसे लोगों के लिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की गई है। श्रीमद् महामुनि कृते किम वापर ईश्वरः। जब श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ वेदव्यास जी ने किया, और किसी ग्रंथ की क्या आवश्यकता है? तो ऐसे ग्रंथ में अमल पुराण जिसमें कोई मल नहीं है, तो ऐसे ग्रंथ में साधारण इतिहास या साधारण राजाओं का वर्णन भला क्यों होगा? तो जो भी वर्णन हम श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं इनका विशेष महत्व रहता है हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए और सारे जगत के कल्याण के लिए, नहीं तो ऐसा वर्णन इस ग्रंथ में नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि विदुर और मैत्रेय दोनों बहुत ही उन्नत हैं आध्यात्मिक जीवन में। तब दो बड़े उन्नत व्यक्ति मिलते हैं आध्यात्मिक जीवन में तो वो कोई भौतिक चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे। जब भगवान के दो भक्त मिलते हैं तो भगवान के बारे में ही बात करेंगे, या भगवान से जो संबंधित है उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, प्रजल्प नहीं करेंगे। मत चित्ता मदगतः प्राणा बोधयंतस परस्परम कथयंतस च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। जब भगवान के भक्त मिलते हैं तो भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं कि इन भक्तों के लिए मैं तो प्राण हूँ उनका। मत चित्ता मदगतः प्राणा, मैं तो उनके लिए प्राण हूँ, हमेशा उनके चित्त में मेरा ही स्मरण चिंतन करते रहते हैं। बोधयंतः परस्परम कथयंतस च माम नित्यं, नित्य मेरी कथा आपस में परस्पर करते रहते हैं। तो इसीलिए जब विदुर जो कि भगवान के महान भक्त हैं, महाभागवत हैं, और मैत्रेय मुनि ये भी भगवान के भक्त हैं, भले वो पूरी तरह से शुद्ध भक्त न हो, उनकी भक्ति प्रभुपाद जी समझाते हैं ये ज्ञान मिश्र भक्ति है, लेकिन फिर भी वो भगवान के भक्त हैं। और एक पूरा स्कंद उन्होंने विदुर जी को सुनाया है श्रीमद् भागवत में, तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो जब विदुर और मैत्रेय ऋषि जैसे दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं तो उनका संवाद साधारण कैसे हो सकता है? उनका संवाद साधारण राजाओं के इतिहास के बारे में क्यों होगा? तो इसलिए ये जो सुनना चाह रहे हैं विदुर जी, ये भी कोई विशेष बात है, क्योंकि ये सारे राज ऋषि हैं और इनका वर्णन सुनने से हमारा कल्याण होगा और इनके बारे में सुनने से हमारा हृदय शुद्ध होगा। हम जान पाएंगे कि ये महान महान व्यक्तियों ने क्या किया, कौन से इन्होंने कार्यकलाप किए। धर्मावृद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ, गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जब संभोग पुरुष स्त्री में होता है और उसे संतान की उत्पत्ति होती है तो वो पाप नहीं कहलाता, लेकिन संतान की उत्पत्ति की इच्छा न रखते हुए जो संभोग किया जाता है वो पाप होता है। इसलिए आजकल के आधुनिक जमाने में जो गर्भ विरोधक दवाइयां वगैरह हैं या जो सुविधाएं उत्पन्न हुई हैं, ये सब पाप की सुविधाएं हैं, क्योंकि इससे हम संभोग करना चाहते हैं लेकिन संतान की उत्पत्ति नहीं चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं स्पष्ट रूप से कि संभोग करना है तो केवल संतान की उत्पत्ति के लिए करना है, अन्यथा नहीं करना है। और ऐसे संभोग से जो राज ऋषियों की हुई उनकी रानियों के साथ, तो ऐसे संभोग से ऐसे महान महान संतानों की उत्पत्ति हुई जिनके बारे में विस्तार में वर्णन श्रीमद् भागवत में है। तो ऐसे वंश का वर्णन सुनना चाह रहे हैं विदुर जी मैत्रेय मुनि से। तो सबसे पहले तो ब्रह्मा जी हैं जिनको स्वयंभू कहते हैं। स्वयंभू मतलब जिनकी उत्पत्ति स्वयं हुई है, जिनके कोई साधारण माता और पिता नहीं हुए हों। उनके माता पिता दोनों गर्भोदक्षाय विष्णु हैं, दोनों स्वयं भगवान विष्णु या नारायण हैं।
तो इसलिए उनको स्वयंभू कहा जाता है। और स्वयंभू ब्रह्मा जी के कई पुत्र हुए, उनमें से एक हैं स्वयंभू, तो स्वयंभू से उत्पन्न हुए स्वयंभुवा, स्वयंभुवा वो पहले मनु बने, स्वयंभुवा मनु, जैसे मरीचि के पुत्र हुए मारीचि। तो इस प्रकार से जब आ किया जाता है, कुंती के पुत्र हुए कौंतेय, तो स्वयंभुव के पुत्र हुए स्वयंभुवा, स्वयंभुव मनु। और ब्रह्मा जी के कई पुत्र हुए, जैसे अत्रि मुनि, पुलस्त्य मुनि, पुलह मुनि, क्रतु मुनि, भृगु मुनि और नारद मुनि, चार कुमार, शिव जी इत्यादि, इतने सारे मुनि हुए, वशिष्ठ मुनि। तो इससे सारे ब्रह्मा जी के पुत्र हुए इतने सारे, और उनमें से एक जो प्रमुख है वो है स्वयंभुव मनु। तो स्वयंभुव मनु का वंश क्या है ये सुनना चाह रहे हैं विदुर जी। तो ब्रह्मा जी ने केवल स्वयंभू मनु को जन्म नहीं दिया, साथ साथ एक कन्या को जन्म भी दिया जिनका नाम था शतरूपा। तो शतरूपा और स्वयंभू मनु देखा जाए तो भाई बहन थी, लेकिन उनका विवाह हुआ। क्यों? क्योंकि और कोई थे नहीं उस समय, सारे ब्रह्मांड में केवल ये सारे ऋषि थे और स्वयंभू मनु और शत्रुपा। तो इसलिए अगर ब्रह्मांड में वंश को फैलाना है, प्रजा को फैलाना है, वंश को बढ़ाना है, तो और कोई चारा नहीं था। और इस प्रकार से देखा जाए तो हम सारे जो प्राणी यहां ब्रह्मांड में रहते हैं, केवल मनुष्य जाति ही नहीं लेकिन सारे प्राणी भाई बहन हैं। हमारा कोई ना कोई संबंध है क्योंकि हम सब ब्रह्मा जी से आ रहे हैं। तो हमारा संबंध अगर आगे वंश में देखा जाए, आपका वंश अगर आप देखते रहे आगे 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 पीछे पीछे क्या हुआ, तो आप सीधा ब्रह्मा जी तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए हम सब एक परिवार के हैं, वसुधैव कुटुंबकम। तो वास्तव में सारे प्राणियां केवल मनुष्य ही नहीं ब्रह्मा जी से आते हैं। तो इस प्रकार से स्वयंभू मनु और शत्रुपा का विवाह हुआ और उनके एक पांच संतान हुए, जिनमें से दो पुत्र और दो पुत्रियां हुई। दो पुत्रों का नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद, और तीन कन्याएं हुई जिनके नाम थे आकुति, प्रसूति और देवहूति। और इनके आगे आगे चलकर वंश हुए, जो संतान हुए वो भी बड़े बड़े महान हस्ती हुए। तो राजा प्रियव्रत, उनकी एक कन्या थी जिनका विवाह उन्होंने कराया शुक्राचार्य से। शुक्राचार्य आप जानते हैं कि वो असुरों के गुरु बने, और शुक्राचार्य की कन्या हुई देवयानी, और देवयानी ने विवाह किया ययाति से, और ययाति वास्तव में उन्होंने जन्म लिया था अत्रि मुनि के वंश में, अत्रि मुनि जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और उनके कई पुत्र हुए, ययाति की और एक पुत्र हुए जिनका नाम है यदु, जिनके पीछे यदु वंश कहलाता है, और इस यदु वंश में कृष्ण प्रकट हुए। तो इस प्रकार से प्रियव्रत राजा की कन्या के वंश में आए भगवान कृष्ण, और प्रियव्रत राजा के 13 पुत्र थे। तो इन 13 पुत्रों में तीन पुत्र मनु बने। आप जानते हैं कि अभी जो मनु राज कर रहे हैं उनका नाम है वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु मतलब वो विवस्वान अर्थात सूर्यदेव के पुत्र हैं। विवस्वान वैवस्वान, तो संस्कृत में ऐसे कहा जाता है पुत्र को, जैसे मृकंडु ऋषि के पुत्र हुए मार्कंडेय, तो विवस्वान के पुत्र हुए वैवस्वान। तो वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु अभी के मनु हैं, सातवें नंबर के मनु हैं, और पहले मनु स्वयंभूव मनु हैं। तो बीच में पांच मनु हैं रह गए। इन पांच मनु में से दूसरे मनु जो हैं, जिनका नाम है स्वारोचिष मनु, ये अग्निदेव के पुत्र थे। और फिर तीसरे, चौथे और पांचवें मनु अर्थात उत्तम, तामस और रैवता, ये जो तीन मनु हुए ये प्रियव्रत राजा के पुत्र थे। तो प्रियव्रत राजा के तीन पुत्र मनु बने। उनके और तीन पुत्र वो सन्यासी बने, और बाकी जो रहे सात पुत्र वो बने सप्तद्वीपों के राजा। और इन सप्तद्वीपों के राजाओं में से एक प्रमुख जो थे उनका नाम था आग्निध्र। फिर आग्निध्र के 9 पुत्र हुए। उन 9 पुत्रों में से एक पुत्र हुए जिनका नाम था नाभि। नाभि ने विवाह किया मेरु देवी से, और मेरु देवी और नाभि के विवाह से उत्पन्न हुए ऋषभदेव, महाराज ऋषभदेव। और महाराज ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। इन 100 पुत्रों में से सबसे वरिष्ठ थे महाराज भरत। महाराज भरत के साथ में 9 क्षत्रिय भाई और थे जो पृथ्वी लोक का राज कर रहे थे। तो ये हुए 10 क्षत्रिय पुत्र। फिर हुए 9 और पुत्र जो परमहंस हुए, जिनको नव योगेंद्र कहते हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में महाराज निमि को उपदेश दिया। और फिर ये हुए 19 पुत्र। ये 9 पुत्र जो हैं ये ब्राह्मण क्षत्रिय के भी परे हैं, क्योंकि जो परमहंस होते हैं वो वर्णाश्रम के भी परे हो जाते हैं। और बाकी 81 पुत्र जो थे, 81 पुत्र वो ब्राह्मण बने। और इस प्रकार से महाराज भरत से ये भारतवर्ष कहलाता है, और आगे वो वंश चलता गया महाराज प्रियव्रत की ओर से। और दूसरे पुत्र उनके थे उत्तानपाद। उत्तानपाद के दो पुत्र हुए उत्तम और ध्रुव महाराज। तो उत्तम थे रानी सुरुचि की के पुत्र और ध्रुव महाराज थे रानी सुनीति के पुत्र। अब ध्रुव महाराज का भी वंश बढ़ता गया। ध्रुव महाराज के पुत्र का नाम था वत्सर। और आगे चलते गए उसी वंश में कई पीढ़ियों बाद में आए चाक्षुष मनु, जो छठे नंबर के मनु हैं। अभी हमने देखा सबसे पहले मनु कौन थे, स्वयंभू मनु। दूसरे मनु थे अग्निदेव के पुत्र जिनका नाम था स्वारोचिष मनु। तीसरे चौथे और पांचवे मनु उत्तम तामस रैवता, ये थे प्रियव्रत राजा के पुत्र। और छठे मनु जो चाक्षुष मनु कहलाते हैं, ये मनु ध्रुव महाराज के वंश में आए हैं कई पीढ़ियों बाद में। और आगे चल के चाक्षुष मनु के बाद में आए राजा अंग। फिर राजा अंग के पुत्र हुए राजा वेण, जो बड़े दुष्ट थे। फिर उनका वध किया ब्राह्मणों ने, और उनके शरीर के अलग अलग अंगों का मंथन करने से दो पुत्र उत्पन्न हुए। उनके जो पाप था वेण के शरीर में, वो निषाद वंश के रूप में उत्पन्न हुए, इसलिए निषाद रूप है, वो नीच माने जाते हैं। लेकिन फिर भी उस जमाने में निषाद जो हुआ करते थे वो भी धार्मिक हुआ करते थे। रामायण में हम पढ़ते हैं कि जब भगवान श्री राम वनवास में जा रहे थे, तो जब वो चित्रकूट की ओर जा रहे थे तो नदी पार करने के लिए गुह नाम के राजा थे, निषदों के राजा, उन्होंने उनका सत्कार किया, उनको बहुत प्रेम दिया, उनकी सेवा की और उनको नदी पार कराया प्रभु रामचंद्र को। तो ये जो प्रसंग है रामायण में बहुत ही सुंदर है। और बाद में जब भरत महाराज भी आए तो ये जो राजा है गुह, उन्होंने थोड़ा संशय किया भरत के ऊपर कि किस उद्देश्य से भरत महाराज अभी यहां आए हैं, क्या ये तो नहीं कि प्रभु रामचंद्र जी को खत्म करने आए हैं। मन में ऐसे विचार हुआ और सीधे जाकर उन्होंने भरत महाराज से प्रश्न किया कि आप तो अयोध्या के राजा हैं, इसलिए हम आपका पूरी तरह से स्वागत करते हैं, लेकिन किस हेतु आप यहां आए हैं, प्रभु रामचंद्र जी का पीछा कर रहे हैं। तो ये निषाद यही वंश है। तो ये एक वेण के जंघों से आया। और फिर महाराज पृथु का जन्म हुआ, जो भी बाकी रह गया महाराज पृथु। और महाराज पृथु के साथ में अर्ची, ये दोनों आए। महाराज पृथु शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं, और उनका शक्ति, उनकी जो विशेष शक्ति है प्रजा के पालन पोषण के लिए है। हर एक शक्त्यावेश अवतार की अलग अलग शक्तियां होती हैं, जैसे नारद मुनि की शक्ति है भक्ति में, चार कुमारों की शक्ति है ज्ञान में, परशुराम देव की शक्ति है दुष्टों का नाश करने में। इस प्रकार से अलग अलग शक्त्यावेश अवतार जो होते हैं उनको विशेष अलग अलग शक्तियां प्रदान की जाती हैं। और पृथु महाराज को शक्ति जो प्रदान की गई थी वो प्रजा के पालन पोषण में थी। और फिर पृथु महाराज और अर्ची देवी फिर उनके पुत्र हुए, और उनके वंश में कई पीढ़ियों बाद हुए राजा बरहिषत। बरहिषत मतलब प्राचीन बरहिषत, जिनको कि चौथे स्कंद में हम पढ़ते हैं नारद मुनि ने उपदेश दिया। फिर ये राजा प्राचीन बरहिषत के पुत्र हुए जिनका नाम था प्रचेत। तो ये 10 पुत्र प्रचेत थे, वे तपस्या करने गए और पानी के भीतर तपस्या कर रहे थे। और जब बाहर आए तो उन्होंने शिवजी का दर्शन किया, और शिवजी का दर्शन करके उनको रुद्र गीत बताया शिवजी ने, और तपस्या करते करते जब बाहर आए उन्होंने देखा कि सारे वृक्ष हैं श्री श्री राधा गिरिधारी जी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। जब वो वृक्षों देखा कि सारे जग भर में वृक्ष हैं, वृक्ष को जला डाला, और उस समय सोमदेव ने आकर, जो कि वृक्षों के प्रभु हैं, उन्होंने मारिश नाम के अप्सरा को उनके हवाले कर दिया और कहा कि आप इस कन्या से विवाह करो। तो फिर प्रचेत जो है वो शांत हुए, मनीषा से विवाह किया, और उनके विवाह से उत्पन्न हुए एक पुत्र जिनका नाम था, कोई बता सकते हैं, राजा दक्ष, जो कि प्रजापति में से प्रमुख माने जाते हैं। और राजा दक्ष के 60 कन्याएं हुई, और इन 60 कन्याओं से अलग अलग योनियां हुई, कीड़े की योनि, सांप की योनि, वृक्ष की योनि, पशु की योनि, अलग अलग योनियां दक्ष राजा के अलग अलग कन्याओं से हुई। हमारे वैज्ञानिकों के लिए संशोधन करने का विषय है कि कैसे ये सारे योनियां दक्ष राजा की कन्या से उत्पन्न हुई। ये विज्ञान वो नहीं समझते हैं, वो डीएनए क्रोमोसोम कैसे थे उनके, वो भी संशोधन करने लायक है। तो खैर ये 60 कन्याएं तो हुई, उनके बाद में उनके 10,000 पुत्र हुए जिनका नाम था हर्यश्व, लेकिन इनको नारद मुनि ने प्रचार करके सन्यासी बना दिया। तो बेचारे दक्ष बहुत दुखी हुए, और 1,000 संतान पुत्रों की उत्पत्ति की जिनका नाम था शवलश्व, इनको भी नारद मुनि ने सन्यासी बना दिया। इसके बाद में बेचारे दक्ष राजा बहुत दुखी हुए, और नारद मुनि के लिए उन्होंने शाप दिया कि आप एक जगह कहीं रह नहीं पाओगे, आपको घूमते रहना पड़ेगा, भ्रमण करते रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वंश बढ़ता गया। तो ये हुए उनके 2 पुत्रों की का वंश, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और उधर उनके 3 कन्याएं भी हुई स्वयंभू मनु के, उनमें से सबसे बड़ी कन्या थी आकुति। तो आकुति का विवाह करा दिया स्वयंभू मनु ने प्रजापति रुचि से, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखा स्वयंभू मनु ने। क्या शर्त रखा? कि आपका जो पुत्र होगा फिर से मुझे सौंप देना होगा, मैं गोद ले लूंगा उस पुत्र का। अब उस समय प्रियव्रत राजा और उत्तानपाद राजा का जन्म हुआ था, तो स्वयंभू मनु के 2 पुत्र पहले से ही थे, लेकिन फिर भी जब उनकी कन्या आकुति का विवाह वो प्रजापति रुचि से कराने जा रहे थे, फिर भी उन्होंने ये शर्त रखा कि आपका पुत्र मेरे हवाले कर देना चाहिए। अब ये पौत्र का धर्म जो है तब किया जाता है, ये भी शास्त्रों में लिखा है, इसके लिए अनुमति है शास्त्रों में, लेकिन ये तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति के पुत्र नहीं होते। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि स्वयंभू मनु के 2 पुत्र पहले से ही थे, तो ऐसा उन्होंने शर्त क्यों रखा? प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये शर्त उन्होंने ऐसा इसलिए रखा कि वो जानते थे कि जो आकुति और प्रजापति रुचि के पुत्र होंगे वो भगवान विष्णु के अवतार होंगे, इसलिए उन्होंने यह शर्त रखा। तो उनके नाम, उनके 2, एक कन्या हुई, एक पुत्र हुए। तो पुत्र का नाम था यज्ञ और पुत्री का नाम था दक्षिणा। दक्षिणा थी लक्ष्मी देवी के अंशावतार और यज्ञ थे विष्णु के अंशावतार। तो हालांकि वो भाई बहन थे, फिर भी उनका विवाह हुआ। और एक उदाहरण देखते हैं जब भाई बहन का विवाह हुआ, लेकिन ये खुद लक्ष्मी और विष्णु है, केवल ये लीला कर रहे हैं भाई बहन का के रूप में आकर, इसलिए लक्ष्मी विष्णु का विवाह तो होना ही है। तो फिर दक्षिणा और यज्ञ का विवाह हुआ। तो ये है आकुति का वंश। और दूसरे रहे प्रसूति का विवाह हुआ प्रजापति दक्ष से। अब दक्ष ये उत्तानपाद राजा के वंश में भी आते हैं और प्रसूति के वंश में भी आते हैं। तो ये कैसे हुआ? जो प्रसूति के वंश में आते, जो प्रसूति के पति हैं दक्ष, ब्रह्मा जी के पुत्र, उनका जो है वध हो गया, जब उनकी मृत्यु हो गई, ये हम आगे चर्चा करेंगे, तब अगले जन्म में वो प्रचेत के पुत्र के रूप में आए। लेकिन पहले जन्म में वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे और वो प्रसूति के पति के रूप में आए। तो फिर इनके 16 कन्याएं हुई, दक्ष और प्रसूति। इन 16 कन्याओं में से 13 कन्या जो है दक्ष ने धर्म नाम के देवता के हवाले कर दी। तो 13 कन्या धर्म राजा के हवाले हुई। इन 13 कन्याओं में से एक कन्या है जिनका नाम है मूर्ति देवी। मूर्ति देवी का विवाह जो धर्म राजा से हुआ, उनका एक पुत्र हुआ, जिनके दो पुत्र हुए, जिनके नाम है नर नारायण ऋषि, जो भी अवतार माने जाते हैं भगवान के। और ये नर नारायण ऋषि आज भी बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। तो ये हुए धर्म के की जो का जो वंश है। और जो दो कन्याएं थी दक्ष राजा ने कश्यप के हवाले कर दी। कश्यप राजा वो वास्तव में मरीचि के पुत्र हैं और मरीचि भी ब्रह्मा जी के और एक पुत्र हैं। तो कश्यप वो ब्रह्मा जी के पोते और उनका विवाह दक्ष के दो कन्या से हुई जिनका नाम है अदिति और दिति। कश्यप और दिति से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ और जो मरुत हैं उनका भी जन्म हुआ। और उसके बाद में अदिति और कश्यप से सारे देवताओं का जन्म हुआ। उनमें से प्रमुख रहे विवस्वान सूर्यदेव, जिनसे वैवस्वत मनु, और उनसे और एक वंश आता गया मनु का, और बाद में सारे देवताओं का वंश उसमें आता गया। और सूर्य वंश में, इसी वंश में सारे राजाएं थे और फिर प्रभु रामचंद्र ने इस वंश में जन्म लिया, रघुवंश में। तो इस प्रकार से अदिति और दिति दो और कन्याएं हुई। तो 13 और 2 मिलकर हुई 15 और बाकी रहेगी 16वीं कन्या। इस 16वीं कन्या का नाम था सती, जिनका विवाह दक्ष ने करा दिया शिवजी से। और फिर ये कथा तो जानती ही है कि किस प्रकार से सती ने अपने शरीर खत्म कर दी, क्योंकि दक्ष राजा ने उनके पति शिवजी का अपमान किया। और उसके बाद में शिवजी के अनुयायियों ने दक्ष राजा का सर काट दिया, एक बकरी का सर डाल दिया, और अंत में दक्ष राजा की मृत्यु हुई। तो वो प्रचेत और मरीचा के पुत्र के रूप में आए। तो ये हुए प्रसूति और दक्ष राजा के संतान, ये वंश। और फिर स्वयंभू मनु के तीसरे कन्या थी जिनका नाम था देवहूति। तो देवहूति का विवाह करा दिया स्वयंभू मनु ने कर्दम मुनि के साथ में। कर्दम मुनि भी ब्रह्मा जी के एक पुत्र हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी के छाती से जन्म लिया। और इनके भी एक 9 कन्याएं हुई और एक पुत्र। पुत्र का क्या नाम है? कपिलदेव, जिन्होंने उपदेश दिया है उनकी माता देवहूति को श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद में, और जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। और इस प्रकार से एक पुत्र और 9 कन्याएं हुई। इन 9 कन्याओं में से एक कन्या है जिनका नाम है अनसूया। अनसूया का विवाह हुआ अत्रि मुनि से, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और अत्रि मुनि की कथा 4थे स्कंद में आती है कि किस प्रकार से वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन कौन भगवान है नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने पुकारा केवल सृष्टिकर्ता को। और बहुत लंबी तपस्या के बाद में सृष्टिकर्ता की याचना कृपा याचना कर रहे थे, तो तीनों सृष्टिकर्ता आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उनके सामने आ गए। और अत्रि मुनि एक पैर पर खड़े तपस्या कर रहे थे, एक पैर पर लड़खड़ाते हुए वो गए और दंडवत प्रणाम किया तीनों से और कहा कि आप तीनों मेरे सामने आ गए। तो तीनों ने जवाब दिया कि आपने हम में से किसको पुकारा, तीनों को पुकारा, सृष्टिकर्ता कह दिया, तो हम तीनों आ गए हैं और जब आए हैं तो हमें कोई वरदान देना होगा। आपने वरदान मांगा था कि आप जैसा ही पुत्र हमें चाहिए, तो इसलिए हम तीनों के अंश अवतार आपके पुत्र के रूप में आएंगे। इसलिए विष्णु के अंशावतार हुए दत्तात्रेय और शिव जी के अंशावतार हुए कौन, दुर्वासा मुनि, और ब्रह्मा जी के अंशावतार हुए सोमदेव चंद्रदेव। तो ये तीनों त्रिमूर्ति के जो अंशावतार हैं वो अत्रि मुनि और अनसुया देवी के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया। और आगे चल के यही अत्रि मुनि और अनुसुईया की भेंट हुई सीता देवी लक्ष्मण और प्रभु रामचंद्र से जब वो वनवास में थे। और रामायण में हम पढ़ते हैं कि अत्रि मुनि ने कहा प्रभु रामचंद्र जी से, सीता देवी को अनुसुईया के पास में भेजो, बहुत तपस्वी हैं ये महिला, बहुत वृद्ध हैं, वरिष्ठ हैं। और सीता देवी जब अनुसुईया के पास में गई तो अनुसुईया देवी ने सीता देवी को बहुत अच्छा उपदेश दिया कि स्त्री को कैसे रहना चाहिए ये संसार में, और विशेष करके पत्नी का कर्तव्य क्या होता है, इसके बारे में बहुत ही मधुर उपदेश उन्होंने किया। और सुंदर उनको ऐसे उपहार किए, फूलों की माला और ऐसे गहने का उपहार उनको दिया सीता देवी को। तो ये हुए अनुसुईया नाम की कन्या जो कि कर्दम मुनि और देवहूति की थी। दूसरी कन्या हुई कला, जिनका विवाह हुआ मरीचि से, मरीचि जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, और इनसे कश्यप मुनि हुए पुत्र और पूर्णिमा पुत्री कन्या हुई। और उनके साथ ऐसे पुत्र और अन्य कन्याएं थी जिनका विवाह दक्ष प्रजापति ने अलग अलग ऋषि मुनियों से करा दिया जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। इस प्रकार से ये सारा वंश बढ़ता गया बढ़ता गया। तो श्रीमद् भागवत में जो हम देखते हैं कि सारे वंश फिर कैसे बढ़ते हैं, अलग अलग पीढ़ियां, उनमें ऐसे ऐसे महान हस्तियां हुए हैं। अभी समय नहीं है, नहीं तो सारा वंश जो श्रीमद् भागवत का जो वंश का वृक्ष है वो हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे आगे बढ़ता है, कौन किसका पुत्र हुआ। लोग वास्तव में ये जानने के लिए बहुत शौकीन होते हैं कि उनके रिश्तेदार कैसे होते हैं। माता पिता हमेशा अपने बच्चे को समझाते हैं कि देखो ये तुम्हारे, ये मेरे भाई के, बहन के, भाई के, पति के ऐसे वैसे, पत्नी के ऐसे वैसे वैसे संबंध हैं। इस प्रकार से दूर दूर के संबंध बच्चों को समझाते हैं माता पिता, ताकि बच्चा समझ ले कि ये वंश कैसे बढ़ता आया है उनका। तो हम हमारे साधारण जो भौतिक वंश हैं इनका वृक्ष बनाने के लिए बहुत इच्छुक होते हैं, लेकिन इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता है। लेकिन जो श्रीमद् भागवत का वंश का वृक्ष है, जो स्वयंभू मनु जैसे महान हस्तियों से आता है, ऐसे वंश का, ऐसे पीढ़ियों की उन्नति पढ़ने से हमारे लिए बहुत लाभ होगा, क्योंकि ऐसे वंश में ऐसे महान महान व्यक्तियों ने जन्म लिया है। इनके कार्यकलापों का श्रवण करने से हमारा हित होगा। इसलिए जो विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं मैत्रेय मुनि को, वो कोई साधारण वंश के बारे में नहीं है, लेकिन ऐसे विशेष व्यक्तियों के बारे में वो सुनना चाहते हैं। तो इसलिए हमें भी इस वंश के वर्णन को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? प्रश्न है कि ब्रह्मा जी का कार्य था प्रजा की उत्पत्ति करना, ताकि उन बद्ध जीवों को एक देह मिले, शरीर मिले। जिन बद्ध जीवों ने पाप किए इसलिए भौतिक संसार में हैं, और यहाँ पे इस वंश में हम वर्णन देखते हैं ऐसे महान महान व्यक्तियों का, तो फिर वो सारे पापी बद्ध जीव कहाँ गए? पापी बद्ध जीव अभी सुप्त अवस्था में हैं, वो ये प्रजा की उत्पत्ति जैसे जैसे हो रही है, अलग अलग योनियों की उत्पत्ति जैसे जैसे हो रही है, तो शरीर की उत्पत्ति भी हो रही है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि बंबई में इतने सारे घरों की आवश्यकता है, बन रहे हैं धीरे धीरे से, अभी मार्केट डाउन है वो अलग बात है, लेकिन घर बन रहे हैं। और फिर एक ही घर में जो ज्यादा लोग रहते थे वो अब नए नए घर में जाके रहते हैं। तो जीव तो है सुप्त अवस्था में, विष्णु में है, और सही अवसर की अपेक्षा कर रहे हैं जब उनके लिए सही योनि बन जाएंगे। पर्याप्त मात्रा में जब शरीर बन जाते हैं, योनियां बन जाते हैं, तो फिर उनके लिए शरीर रह जाते हैं, फिर वो अलग अलग शरीर में ब्रह्मा जी उनको डाल देते हैं। लेकिन अभी तक ऐसे इतने शरीर हुए ही नहीं है, और हो रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा कि दक्ष प्रजापति के 60 कन्याओं से इतने सारे योनियां बन गई, तो फिर तो सारे अलग अलग जीवों को शरीर मिल गए रहने के लिए। और इसके अलावा अगर महान महान व्यक्ति हुए, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जैसे लोगों के लिए भी अवसर मिला, और फिर उनके साथ में जो हजारों लाखों की संख्या में जो असुर की सेना थी वो सब कहां से आए? ये केवल विशेष विशेष व्यक्तियों का वर्णन है, इसका मतलब ये नहीं है कि इतने ही व्यक्ति थे उस समय, और भी बहुत सारे लाखों लाखों की संख्या में थे। ब्रह्मा जी ने और कितने सारे लोगों का संतानों की उत्पत्ति की जिनका वर्णन इस आज हमने प्रवचन में नहीं किया। असुरों की उत्पत्ति भी ब्रह्मा जी से ही हुई। ब्रह्मा जी के शरीर और मन से सारे उत्पन्न हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी के उस समय कोई पत्नी नहीं थी, तो ब्रह्मा जी के जो भी पुत्र उत्पन्न हुए या तो उनके शरीर से, या तो उनके मन से, या उनके बुद्धि से उत्पन्न हुई। प्रजापति दक्ष उन्होंने बहुत संतान की उत्पत्ति की, लेकिन उनसे पहले स्वयंभू मनु आए। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि केवल दक्ष राजा ही एकमात्र प्रजापति है, उनका जन्म होना था, उनके जन्म होने के बाद में ही तो वो प्रजा की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो उनके पहले स्वयंभू मनु आए, स्वयंभू मनु तो दक्ष प्रजापति के बहुत आगे आए। दक्ष प्रजापति भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और स्वयंभू मनु ने अपनी कन्या प्रसूति को दक्ष के हवाले कर दिया, और फिर ये सारी घटनाएं हुई। साथ साथ ब्रह्मा जी ने और कई ऋषि मुनियों को भी जन्म दिया, इस प्रकार से संतान हुए। तो फिर जब दक्ष प्रजापति का विवाह हुआ, उसके बाद में उन्होंने इतने सारे संतान की उत्पत्ति की। हम देखते हैं कि यहां पर उन्होंने 16 कन्याओं को जन्म दिया, और अगले जन्म में उन्होंने 60 कन्याओं को जन्म दिया, और 11,000 पुत्रों को जन्म दिया। कोई साधारण बात नहीं है, इसलिए उनको दक्ष कहते हैं। नहीं, ये सारी कहानी ब्रह्मा जी के एक दिवस की बात है, एक कल्प की बात है, एक ही दिवस इसमें आती है। पहले जन्म में दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, और फिर उनकी कन्या हुई सती, फिर उनकी वजह से सर कटवा गया, और फिर बकरी का शरीर आ गया, फिर उनका देहांत भी बाद में हो गया, फिर दूसरा जन्म उनको मिला प्रचेत और मरीषा के पुत्र के रूप में, तब ये वंश पड़ा, वही दक्ष प्रजापति। पोस्ट है, पदवी है, पद है ये। 14 मनु होते हैं ब्रह्मा जी के हर दिवस में, अभी तक 7 हुए हैं, इसके बाद में भी और 7 होंगे, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, धर्म सावर्णी, इंद्र सावर्णी इत्यादि, ऐसे और 7 मनु आने वाले हैं। मनु का कार्य होता है ब्रह्मा जी का प्रतिनिधित्व करते हुए सारे ब्रह्मांड का संभालना और ये देखना कि अलग अलग ब्रह्मांड के हिस्से में राजा ठीक ठाक अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, हर जगह में राजा है कि नहीं है। जैसे जब पृथ्वी लोक में कोई राजा नहीं थे तो उस समय प्रियव्रत राजा जो कि गंधमादन पर्वत पे तपस्या कर रहे थे उनको फिर से बुला के लाया स्वयंभू मनु ने। तब जब ध्रुव महाराज के बाद जो वंश हुए सब खत्म हो गए, हाँ, तो उसके बाद में उत्तानुपात के पुत्र ध्रुव के बाद कितने सारे पीढ़ियां हुई, उनके बाद फिर से प्रियव्रत आए, क्योंकि प्रियव्रत इतने लंबे समय तक गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। जब देखा कि अभी आवश्यकता है राजा की और प्रियव्रत राजा है वहां पर, तो उनको बुलाकर ले आए। तो मनु का कार्य होता है सब देखना कि सब कैसे चल रहा है। मनु ऊपर के लोकों में ही निवास करते हैं, स्वयंभू मनु अभी तो वैवस्वत मनु है, वो विवस्वान के पुत्र हैं। सब सारे लोगों के देखभाल करते हैं। नहीं थे, यही देवता सब आए। ये ऋषि मुनि भी देवी देवता के बराबर ही हैं, लेकिन इनसे सारे अन्य देवता हुए, जैसे अदिति से विवस्वान हुए और अन्य सारे इंद्र वगैरह हुए, सारे देवता इसके पहले नहीं थे। अभी अभी तो शुरुआत हुई वंश की। सुनाई नहीं दिया। ये सारे अलग अलग योनियां हैं, प्रकृति द्वारा उत्पन्न हुए या देवी देवताओं द्वारा? अगर देवी देवताओं द्वारा भी उत्पन्न हुए तो प्रकृति द्वारा ही तो होता है ना कार्य। प्रकृति द्वारा मतलब क्या है? हाँ, ब्रह्मा जी के माध्यम से भी कई योनियां हुई और फिर उनके जो संतान हुए उनके माध्यम से भी कई योनियां हुई। ये कार्य उन्होंने इनका इसका वितरण कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आप इतना करो, आप ये करो, जितना हो सकता है सब आप प्रजा की संतान की उत्पत्ति बढ़ाओ। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने संतान की उत्पत्ति की, पहले जब ब्रह्मा जी आए कमल पुष्प के ऊपर, उनको पता नहीं चला कि कैसे मुझे सृष्टि का निर्माण करना है, क्या करना है। उन्होंने तपस्या की और फिर ब्रह्मा जी भगवान ने उनको अंदर से ज्ञान दिया और फिर वो कर पाए। तो उसी प्रकार से भगवान की शक्ति और ज्ञान से प्रेरित इन्होंने अपना सारा कार्य किया। इनके लिए स्वाभाविक था क्योंकि अंदर से उनको अंदर मार्गदर्शन बताया। जैसे अभी संतान की उत्पत्ति के लिए स्वाभाविक है सभी लोग संतान की उत्पत्ति करते हैं, उसी प्रकार से इनके लिए भी स्वाभाविक था। स्वाभाविक तौर से सारे जो संतान हुए उन्होंने भी और संतान की उत्पत्ति कर दी और फिर प्रकृति से चलता रहा। इन 60 कन्याओं का कोई सांप के योनि हो गया, किसी को वृक्ष की योनि हो गई, इस प्रकार से आगे संतान और सारे योनियां बढ़ती गई। इस प्रकार से 84,00,000 योनि बन गए। ठीक है, उनके शरीर से ही सारे योनियां आ गए। ठीक है, तो अभी टाइम हो गया है, ये तो महिदर प्रभु हमें काटेंगे। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की जय।
हॉस्पिटल विच इज फ्यू किलोमीटर्स अवे, then we will give anesthesia because the medical rules say without anesthesia you should not conduct the surgery. This was an emergency. Otherwise, this person will die. Therefore, somehow or other, four people catch hold of him. He's shouting. Just catch hold of his mouth. Pull out the bullet first. Then we will take him. Then we'll put him in hospital and then do the needful. But right now, this is emergency. So it is described in the scriptures. In fact, the description of Buddha avatar and why he will come is also described in the scriptures. That's the beauty of it. It is said that it's like a main road. Suppose there is a main road and the main road is damaged. Then what do? They take a detour. Small, temporary emergency road. That's not a permanent road. But just they dig one thing and it goes like this, like this, like this and comes back to connect to the main road. Similarly, it is described that when the so-called brahmanas who in the name of religious scriptures started, some concessions are there for some sacrifices of some animals. But in the name of that sacrifice, they made the temple into a slaughterhouse using that axis. At that time, Lord Buddha appeared to bewilder the public. And he said, reject that. To teach a upadharma. Upadharma means sub-religious principle. What is sub-religious principle that he taught? He taught ahimsa. Ahimsa is a sub-religious principle. The real principle, religious principle is love of God. But sub-religious principle is ahimsa. So, he taught this ahimsa. And he said, reject killing of animals. But they said, no, the Vedic scriptures are saying that. Oh, the Vedic scriptures, all right, reject the Vedas. But what is the essence of the Veda? The essence of the Veda is to actually worship the Supreme Lord. So indirectly he cheated them into worshipping him. And they started worshipping him. However, that was only an emergency. That should not become a regular thing. Therefore, what Buddha taught, and in fact when he was asked, Buddha was asked, what about soul, what about God? He said, Buddha is beyond all that. He never commented upon those things. He just said, Nirvana. That means, remove all material desires, that's all. Upadharma, ahimsa was taught. Later, actually the Supreme Lord, to guide them back into the main road, he sent his own empowered devotees. Lord Shankaracharya. Shankaracharya is an incarnation of Lord Shiva. And it is described in the Padma Puran. He said, Maya Vadam Asat Shastram Prachannam Baudhamevava Mayaiva Kalpitam Devi Kalo Brahmana Rupina. Lord Vishnu instructed Lord Shiva, now these people have done enough. So Shankara, you go and preach covered Buddhism. You say, yes, yes, what you are saying is perfectly right. But the same thing the Vedas are saying, which is asat, which is a wrong conclusion. Asat shastram, prachannam bodha, it is covered Buddhism. Mayaiva kalpitam devi, Lord Shiva is telling Parvati, I will concoct this philosophy. Kalau brahmana rupina, in Kali Yuga I will come as brahmana, of a brahmana, and I will do this. So what he did was, he kicked Buddhism out of India and established the Asat Shastra of Mayavad. What did he say? That you are saying Shunyavad. Shunyavad, everything is zero. There is nothing. So he said, yes, but the same thing what you call Shunya is Brahman. Nirguna, Nirakar, Nirvishesh, Brahma. And he actually preached so strongly. He established four corners of India. He established four centers and kicked Buddhism completely out. What was established during the time of Ashokavardhan. So you find Badrinath to Kanyakumari and Gujarat to Jagannath Puri. That was his job. But then that was the wrong conclusion. Therefore, next, which was brought like this, was brought closer from Advaita, everything is one, to Vishishta Advaita by Ramanujacharya few hundred years later. And Ramanujacharya brought out pure devotion through Vishishta Advaita. One and different. Shankaracharya said everything is one. You are that. You are God. But we are not God. We are part and parcel of God. So he preached Vishishta Advaita. Yes, you are one and different. The example that he gave was like the waves and the ocean. The waves are part of the ocean, but the waves are not the ocean. Then came Dvaita by Madhvacharya, closer to the main road. God is God, you are part and parcel, you cannot become God. But you are one in quality, but different in quantity. In quality you are all one, but in quantity he is great and he is Vibhu, we are Anu. Then came Chaitanya Mahaprabhu, who is another incarnation of Krishna, to connect with the main road of ultimately pure devotion to Krishna. So it was a master plan. It was part of a master plan. Also, these philosophies will always exist. There will always be Nastikas. There will always be these kinds of people. Even in the Bhagavad Gita, Lord Krishna says, for these, even if you think that this world is made of chemicals, still you don't have to lament. Why? Because there will be people who are always this type. Because all types of people will be there in this material world. So therefore, to satisfy all of them, there are philosophies. Somehow to elevate them to some level, at least this. But as they get elevated, little higher, little higher, little higher. We will discuss that on the sixth day when we discuss the different types of yoga and the topmost yoga system. So in this way, Lord Buddha, yes, he did reject the Vedas, but indirectly cheated them into worshipping him, which is the essence of all scriptures, to worship the Supreme Lord. Therefore, we worship Buddha as an incarnation and avatar of Krishna, but we reject his philosophy. Because his philosophy was meant for a particular time, it was not based on the scriptures. So we worship him as an incarnation of God, but we reject his philosophy, we don't accept. Is there any other question?
Haribol Prabhuji, you said that God is creator of everything, Krishna is creator of everything. Then how is that he takes birth in this planet?
Yes, that's a very interesting question. We are also born, he is also born. What kind of a God is he? A beautiful example is given by the acharyas. Like Krishna said, janma karma cha me divyam, my birth and my activities are completely transcendental. The example given is just like the sun. The sun appears in the east, so it seems like the eastern horizon is the womb which is giving birth to the sun. And the sun goes and the sun dies in the evening in the western horizon. And every day a new sun is born and the sun dies in the evening. A person with a childish mentality may think that the new sun is born in the morning and dies in the evening. But an intelligent person understands that the sun is always there, but it appears to be born and appears to set. Appears to rise and appear to set. Similarly, Lord Krishna is always present. However, sometimes he manifests. That is the difference. We are born, but Krishna manifests himself and becomes unmanifest to our ordinary, gross, material eyes. So we may not be. Right now Krishna is here, if you have the eyes to see. So the whole process of spirituality is to qualify to see the Lord. He is there, but we cannot see because we are covered over by the cataract of ignorance. So the whole process, Om Agyan Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshuhu Unmilatam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. We have to take shelter of a doctor an expert surgeon who can remove the cataract of ignorance, then we can actually see the Lord face to face, as you are seeing me and I am seeing you. This is the difference. So Lord is not born. He appears and He disappears from our vision. But if you premanjana churita bhakti vilochanena santa sadaiva hridayesu, those who anoint their eyes with the salve of love, they can actually see the Lord face to face. He is here everywhere, can be present. Otherwise, even if the Lord is present in front of you, you won't think He is Lord. Shishupal saw, Duryodhan saw, but he thought, you are an ordinary fellow. In spite of the fact that
सबके